صلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مخلصین حضرات. ہم جب کسی فقیر کو یا درویش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کی حیرت ہوتی ہے کہ وہ انسان دنیاوی وسائل اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے. خود دکھ اٹھائے گا, دوسروں کو سکھ دے دے گا, خود اپنی ضروریات کو وہ پس پشت ڈال کے دوسروں کی ضروریات کے سلسلے میں اس کے کام آ جائے گا. کھانے کے لیے اس کے پاس پورا کھانا نہیں ہوگا, کپڑا صحیح نہیں ہوگا, رہنے کی جگہ زیادہ اچھی نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوش ہوتا ہے. انسان نے اگر سچی خوشی دیکھنی ہے تو پھر کسی درویش یا فقیر کو دیکھیے, وہ ہر قسم کے حالات میں آپ کو بڑا خوش دکھائی دے گا. اور اگر کوئی اسے یہ کہے کہ اس میں کیا رکھا ہے, تم دنیا داری اختیار کرو تو دنیاوی وسائل تمہیں بڑے میسر آ جائیں گے, تو کتنی ہی بڑی لالچ ہم اسے دیں وہ اس راہ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. حالانکہ انسانی فطرت کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی کسے بری لگتی ہے, لیکن فقیر تیار نہیں ہو رہا, وہ اپنی راہ چلتا ہے. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ فقیر اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. مولانا روم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی, اگرچہ کہنے کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف تھا. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جنت کا مزہ لینے کے لیے انسان کو پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اس کو ذرا سا اگر ڈفرینٹ طریقے سے عرض کر دوں کہ فقیر یا درویش اللہ کی راہ کو کسی قیمت پر چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راہ کے جو مزے ہیں اس کو وہ چکھ چکا ہوتا ہے. تو ہم جیسا انسان, میرے جیسا انسان جو دنیا دار ہے, اس نے تو مزہ چکھا ہی صرف دنیا کا ہے, تو اس کو اس راہ کا کیا پتا کہ اس راہ میں کیا رکھا ہے. بہت پرانی بات ہے, مگر مجھے سن صحیح یاد ہے تو غالباً یہ 73 کا واقعہ تھا یا 74 کا. تو 10 محرم تھا اس دن, میں گھر پہ بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے ایسی میرے دل میں آیا کہ میں پاک پتن شریف جاؤں. उस वक्त तक मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा साहब का मजार मुबारक जो है वो 10 तारीख की सुबह को बंद कर दिया जाता। तो छोटे भाई को मैंने साथ गाड़ी में बिठाया, हम चले गए बाबा साहब के यहाँ। जब वहां पहुंचा तो तकरीबन उस वक्त शाम के 3:30-4 बज रहे थे। तो मालूम ये हुआ कि मजार तो बंद है। तो मुझे किसी साहब ने इस तरह रास्ता तलाश करते देख के कहा कि आप ऐसा करें कि इस घर के अंदर चले जाएं, आगे सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाइए तो आप बिल्कुल मजार पे जा पहुंचेंगे। तो मैं हिचकिचा रहा था कि किसी के घर में मैं कैसे दाखिल हो सकता हूं। तो वही साहब कहने लगे कि नहीं, इसमें नहीं है, तो इनका मेहमान खाना है, लोग इधर से चले जाते हैं। तो मैं फिर भी हिचकिचाया, तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको सीढ़ियों तक छोड़ देता हूं। तो वो साहब मुझे ले गए सीढ़ियों को। हम जब सीढ़ियों से ऊपर गया तो वो उस जमाने में मस्जिद इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी जितनी आज है। तो उसकी साइड पर सहन था वहां। तो मुझसे पहले भी लोग 250-300 आदमी वहां खड़े थे। तो मैंने देखा कि बाबा साहब के जो मजार के बाहर बड़ा सहन है उसकी धुलाई हो रही है और खवातीन और मर्द सारे धो रहे हैं। तो पता ये चला कि वो असल में बाबा साहब की औलाद हैं। तो 10 मुहर्रम के रोज बाबा साहब के पूरे मजार को धोते हैं, वो उनकी अपनी औलाद धोती है। लोग खड़े थे, मैं भी वहीं खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर में मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से किसी साहब ने मेरे कान में कहा कि ये कह रहा है कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है। तो मैंने यूं देखा पलट कंधे पर, तो एक फकीर आदमी जो शर्ट के बगैर थे और बेतरतीब दाढ़ी उनकी और नाक और राल बह रही है उनकी। तो मैं ये समझा कि ये कुछ पैसे लेना चाह रहा है मुझसे। एक बड़ी पुरानी और बड़ी बुरी आदत मेरे अंदर है कि मैं वॉलेट अपना अपने पास नहीं रखता। तो खाली जेब था मैं, तो मैं वहां खड़ा था, दुरुश्री पड़ रहा था दिल में। तो मैंने सोचा कि जेब में है नहीं मेरे पैसे और ये मांग रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं लोगों के दरमियान 2-4 कदम और आगे हो गया। तो 5 मिनट के बाद फिर वही आवाज मेरे लेफ्ट शोल्डर पर से आई कि ये कह रहा है कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है। देखा वही साहब थे। फिर मैं 2-4 कदम आगे हो गया, वो फिर आ गया मेरे पास। तो इस दफा जुमला जरा लंबा बोला कि ये कह रहा है कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है, ये मुझे पुलिस को में दे देगा। तो इसको क्या पता कि पुलिस ने मुझे क्या मारना है, मैं तो बाबा की मार रोज खाता हूं, तो ये पुलिस क्या मारेगी मुझे। तो किस्सा लंबा है, तो आप लोग बोर होंगे क्या सुनना उसका। लेकिन आप ये देखिए कि उस फकीर ने बाद में पता लगा कि वो मजजूब है असल में, और मुझे किसी साहब ने 1970 में कहा था कि वहां उर्स जिस दिन 10 मुहर्रम होता है उर्स का आखिरी दिन, वहां मजजूब आता, अगर कभी आए तो उसको पकड़ लेना, जाने मत देना। तो वो बाद में जब यही किस्सा आगे चला तो पता लगा कि वो मजदूर वही था जिसके बारे में मुझे कहा गया था। अब वो मजदूर जो मुझे बात कह रहा था, कि मैं तो बाबा की मार खाता हूं तो मुझे पुलिस ने क्या मारना। उसकी उसका कहने का मकसद ये था कि बाबा जो मुझे मार मारता है, बाबा फरीद साहब की बात, तो उसके सामने पुलिस की मार क्या मायने रखती है। अब उसको को बात समझ नहीं आती थी, बाद में कुछ पल्ले पड़नी शुरू हो गई बात कि जो मार मुर्शिद से पड़ती है उस मार का कुछ और मजा है, इसलिए कि उसके जरिए इंसान सीखता बहुत कुछ है। मैंने यहां दो चार इतवार पहले जिक्र किया था कि असल में मुर्शिद ऐसे मकाम पर बैठा होता है, बल्कि यूं कहिए कि मुर्शिद बनता ही उस सूरत में है जब उस मकाम पर जा पहुंचे, और वो मकाम वो होता है जहां दिल दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई होती है, दुनिया जब बेवकत हो जाए इंसान के लिए तो दुनियावी स्टेटस, हाँ वो इल्म के लिहाज से हो, दौलत के लिहाज से हो, नौकरी के लिहाज से हो, वो बेमानी हो जाते हैं उस वक्त पर जब दिल से दुनिया की मोहब्बत चली जाए और दुनिया बेवकत दिखाई देने लगे। तो ये सब चीजें उसके लिए बेवकत हो जाती बंदे के लिए। तो मुर्शिद उस मकाम के बाद जाके कहीं बनता है इंसान, तो वो ये नहीं देखता मुर्शिद के शागिर्द जो है मेरा ये, इसका सोशल स्टेटस क्या है, इसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है, इसका माली स्टेटस क्या है, उसके लिए वो बस वो शागिर्द है, क्योंकि उसके साथ खुद ये सलूक हुआ होता है कि मुर्शिद ये नहीं देखते कि ये इस वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा है, दोस्तों के साथ खड़ा है। मुर्शिद तो डांट देंगे जहां भी इंसान से गलती होगी, तो वो उस सलूक को खुद बर्दाश्त करके आया होता है, वही सलूक आगे डिश आउट करता है अपने शागिर्दों पर। तो जब मुर्शिद मार मारता है तो बड़ी सख्त मार होती है, लेकिन उसका मजा होता है कि उस मार के नतीजे में, उस डांट के नतीजे में इंसान को मिलता बहुत कुछ है, लेकिन अब वो जो मिलना है वो इस चीज से मशरूत है कि इंसान को ये पता हो, जैसे हम लोग सेब खाते हैं, हर सेब का एक अलहदा जायका है, जैसे काला कोहलू है, अब उसका एक अलहदा जायका है कि वो बहुत मीठा होगा, मुंह में घुल जाएगा। अमरी सेब है, उसका एक अलहदा मजा है। जूस के लिए जो सेब इस्तेमाल होता है इंतहाई सख्त होगा, लेकिन जूस उसमें बहुत होगा। इसको पहचान वही सकेगा जिसको सेब का पता है, जिसके पास यह इल्म है कि सेब क्या है। इसी तरह गोश्त है, मुझ जैसा इंसान गोश्त खाए उसके लिए हर तरह का गोश्त एक सा है, लेकिन जो गोश्त को खाने वाला है उसको वो समझेगा भी तो एक सेकंड में एक नवाल लेके आपको बता देगा कि ये जिस बकरे का गोश्त है ये बलूचिस्तान का है, NWFP का है, पंजाब का है, अगर पंजाब का है तो पंजाब के ये लोअर पंजाब का है, अपर पंजाब का है, इसलिए कि गोश्त का जायका ही अलग-अलग होगा। बलूचिस्तान का बकरा वो जड़ी बूटियों पर پلا ہے, کیونکہ گھر میں تو رکھتے نہیں ہیں, وہ تو ریوڑ کو پہاڑوں پر چھوڑ دیتے ہیں. وہاں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں, تو جو جڑی بوٹیاں کھاتا ہے اس میں وہ جڑی بوٹیاں بھی ہیں جن کی میڈیسنل ویلیو بڑی ہائی ہے, تو اس کی خوراک کا اثر اس کے گوشت میں ہوتا ہے. گوشت کا ذائقہ بلوچستان کے بکرے کا بالکل علیحدہ ہوگا. این ڈبلیو ایف پی, وہاں پہ وہ چونکہ جڑی بوٹیاں بھی کھاتا ہے اور چارہ بھی کھاتا ہے, تو اس کا ذائقہ بلوچستان کے بکرے کے بعد نمبر دو پر اچھا ذائقہ این ڈبلیو ایف پی کے بکرے کے گوشت کا ہوگا. اپر پنجاب میں سے آنے والا بکرا جو ہے اس کا ذائقہ بالکل اور طرح کا ہوگا, کہ وہ دانے پر پلا ہوا ہے, چارے پر پلا ہوا ہے, وہ جڑی بوٹیاں نہیں کھاتا. لوور پنجاب میں وہ جھاڑیوں پر پلے گا, اس کا ذائقہ مختلف ہو جائے گا. تو یہ سب جو یہ باتیں اسی وقت پتہ چلتی ہیں جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کیا چیز کیا ہے. جنت کا جس کو اندازہ ہے کہ جنت کیا ہے, تو وہ جنت کے لیے ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمانا. لیکن مجھ جیسا گناہگار شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے, تو میں تو یہی دعا کروں گا یا اللہ مجھے تا قیامت اسی دنیا میں رکھنا, کیونکہ میں نے چکھائی جہاں کا مزہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو قرب الہی کا مزہ لگ گیا, وہ جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نہیں چاہیے مجھے, مجھے تو تو چاہیے. تو جن کو رب ملتا ہے وہ دنیا کو بخوشی اپنے ہاتھ سے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون فطرت ایک اور ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے, اور جس سے ہم بھاگتے ہیں دور وہ چیز ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. ایک صاحب نے مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دیا تھا, شاید میں نے پہلے ذکر کیا ہو, مجھے یاد نہیں ہے. یہ بہت پرانی بات ہے, جب کبھی میں نوجوان ہوتا تھا اس وقت کی بات ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ دو چار صدی پرانی بات ہے. وہ میں نئی میں نے نوکری کی تھی, سوئی گیس میں تھا ملتان میں, سیلری بہت اچھی تھی, لاہور یا لاہور سے دور رہ نہیں سکتا, تو میں ہر ویکینڈ پہ لاہور آ جاتا تھا. تو ایک کولیگ تھے میرے جو فوج میں چلے گئے تھے, انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ یار تمہیں بڑا شوق ہے فقیروں سے ملنے کا, تو میں نے ایک ولی اللہ ڈھونڈا, تو ملنا ہے, تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو ہم گئے یہاں سے, اگر ہم جی پی او سے کینٹ کی طرف آئیں تو ریگل کا جو لیفٹ سائڈ پر سٹاپ آتا, بس سٹاپ آتا, اس کے بالکل پیچھے وہ مجھے ایک شاپ پر لے گئے. وہ تھی کیمسٹ کی شاپ, ظہیر سنز کے نام سے. تو فرنٹ پر کمرہ جو تھا وہ کیمسٹ شاپ تھی, اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا, اس میں اس کے مالک بیٹھے تھے ڈاکٹر ظہیر. ان سے ملاقات ہو گئی. تو یہ وہ دور تھا جب میں 40-42 وظیفے صبح, 40-42 وظیفے رات کو پڑھتا تھا, اور ایک جنون سوار تھا میرے اوپر. تو اللہ سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو کے بچ رہا کرے, اور میں اس سے تیرے بندوں کی خدمت کیا کروں. तो डॉक्टर साहब से मुलाकात ही हुई, उन्होंने कहा कैसे आए आप, तो मैंने कहा हजूर एक दुआ कर दीजिए मेरे लिए। तो फरमाने लगे कि क्या दुआ, तो मैंने कहा जी अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे वसी रिस्क अता फरमाए। तो अपनी दुआ का अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया कि ये तो बात मेरे और मेरे रब के दरमियान है, तो मैं किसी बंदे से क्यों जिक्र करूं। तो मैंने दुआ का एक हिस्सा पहला उनसे कहा कि अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे वसी रिस्क अता फरमा दे। तो वो कहने लगे क्या नाम है आपका, तो मैंने अपना नाम बता दिया सरफराज अहमद। दो मिनट उन्होंने गौर किया तो मुझे आंखें खोल के कहने लगे कि आप सैयद हैं, तो मैं कह जी माँ बाप तो यही कहते हैं। तो फरमाया कि अच्छा मैंने आपकी दरख्वास्त ऊपर भेज दी है लिख के, उसका जब जवाब आएगा तो मैं अर्ज कर दूंगा। तो मैं उनसे चेक करता रहा, जब भी लाहौर आया तो हर बार जवाब होता था कि अभी जवाब नहीं आया। तो एक बार जो कॉल किया तो कहने लगे आप कहाँ हैं, मैंने कहा जी आपसे मैं हार्डली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम योर ऑफिस। तो कहने लगे कि फिर आ जाइए, मैंने चाइना से आपके लिए असली जैस्मिन टी मंगवाई है। उस जमाने में जैस्मिन टी को जानता कोई नहीं था, ये बात मैं कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली 1967 की, और आपके लिए मैंने बर्फी मंगवाई है। मैंने टैक्सी पकड़ी सीधा पहुंच गया उनके पास 2 मिनट के अंदर अंदर। तो अंदर जो दाखिल हुए तो वहां एक साहब को तो मैं पहचान गया कि टीवी और रेडियो पे, टीवी और अखबार में उनकी तस्वीरें छपती रहती थी अक्सर, वो थे एके ब्रोही, और उनके साथ एक साहब यूनिफॉर्म में बैठे थे ब्रिगेडियर के, रैंक्स उनके शोल्डर्स पे लगे हुए, तो यहां नेम प्लेट लगी थी जियाउल हक। तो सोफे पर तीसरी सीट खाली थी और सीट के अपोजिट टेबल पर गरम जैस्मिन टी पड़ी हुई थी जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी, और उसके साथ एक छोटी सी क्वार्टर प्लेट में थोड़ी बर्फी। बहुत मजे की चाय, और वाकई असली थी वो, और बर्फी इतनी मजेदार मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। तो बाद में फिर जब खुद कुछ इधर चल पड़ा, कुछ पता चलने लगा मुझे, तो मालूम हुआ कि वो तो जिन्नात से मंगवाई थी उन्होंने। तो जब मैं चाय पी चुका तो डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि जवाब तो आ गया आपकी दुआ का, तो मैंने कहा जी वही सुनने आया था मैं। कहने लगे आपको मैं जवाब बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा, फरमाइए आप हुक्म कीजिए। तो कहने लगे आप मुंतकिम मजाज तो नहीं है। तो मैंने कहा जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है, कभी भूले से ख्याल भी नहीं आया कि मैं किसी से इंतकाम ले लूं। तो कहने लगे अल्लाह आपका भला करे। तो कहने अब मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे कि ये बताइए कि रिस्क खालिक है या मखलूक। तो मैंने कहा जी ऑब्वियसली मखलूक है। फरमाया कि सैयद साहब फिर आपका क्या काम है कि आप मखलूक के पीछे भागें, ये तो मखलूक है जो आपके पीछे भागेगी। तो मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ, तो मैंने कहा जी मुझे अपने दुआ का जवाब नहीं चाहिए, इजाजत दीजिए। हाथ बढ़ाया मैंने, हाथ मिलाया, निकल आया बाहर। बात के फिर वक्त ने 1967 के बाद का जो वक्त गुजरा उसने फिर ये साबित भी कर दिया कि डॉक्टर साहब की बात बड़ी दुरुस्त थी। फिर खुद भी तजर्बा हुआ कि आप अपनी अपनी जिंदगी पे नजर डालिए, زندگی میں جب کبھی کوئی کسی چیز کی خواہش ہوئی آپ کو، تو جس چیز کی آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ خواہش کی اور زندگی میں جس چیز کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کی آپ نے، وہ چیز کبھی نہیں ملی ہوگی آپ کو. اپنی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھیے، کسی چیز کی آپ نے خواہش کی اور اللہ کے سپرد کر کے بھول گئے آپ، وہ چیز عطا ہو گئی. یہ بھی اسی اصول کا حصہ ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ بھاگتا ہے وہ چیز اسے کبھی ملتی نہیں ہے، دور بھاگ جاتی ہے. اسی طرح اس راہ میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی خواہش کے، تو سب کچھ عطا ہونے لگتا ہے. اور جب رب کو پکارتا ہے اس خیال سے کہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں چیز مل جائے، مجھے ولایت حاصل ہو جائے، مجھے کشف مل جائے، مجھے کرامات حاصل ہو جائے، میں سیر کر لوں، کارخانے قدرت کی سیر حاصل ہو جائے، کبھی کچھ ملتا ہی نہیں. انسان ساری عمر اسی چکر میں پھرتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملا کہ نہیں ملا. اور تو اور ایک عجیب چیز ہے کہ مرشد کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اس خواہش میں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ علم حاصل نہیں ہوتا، ایک عجیب چیز ہے. ہم کسی فقیر کے پاس جانا شروع کریں کہ مجھے میرا یہ دنیاوی کام ہو جائے، جتنا اس کے پاس جا کے اس کو ہم پیسٹر کریں گے کہ دعا کریں یہ کام ہو جائے، وہ کام کبھی نہیں ہوگا. آپ اپنا اپنا تجربہ یاد کر لیجئے، اس میں کہیں کوئی چیز غلط نہیں نکلے گی. آپ کبھی آزما کے دیکھیے کہ آپ کسی فقیر کے پاس جائیے، اس سے کسی خواہش کا اظہار ہی مت کیجیے، آپ کے سارے کام از خود ہوتے چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ فقیر کر رہا ہوتا، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، یہ تو شرک ہے. یہ اس فقیر کا دوست ہے اوپر بیٹھا ہوا جو سارے کام کر رہا ہے، تو از خود لحاظ کرتا ہے اللہ کہ یہ میرے دوست کے پاس جانے والا ہے، اس کو لک آفٹر کرتا رہتا ہے. اور کہیں انسان نے بھولے سے یہ بھی کر لیا کہ اس آدمی کے پاس، اس فقیر کے پاس میں بے لوس ہو کے جاؤں تاکہ میرے دوسرے سارے کام ہو جائیں، کام ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو غرض ہو گئی وہاں. آپ مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھیے، سلام کیجئے، واپس آ جائیے، تماشا دیکھیے کیا ہوتا. بات ہو رہی تھی اصول فطرت کی کہ انسان جس چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جتنا بے پرواہ ہو جائے سب کچھ خود بخود ہونے لگتا ہے. رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے، مال دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. آپ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجئے، یہ دور بھاگ جائے گا. میں تو آپ کو ایسی بہکاتا رہتا ہوں مختلف باتوں میں، تو علم کی بات کرتے یہ تو بیوقوفی کی باتیں تھیں سب. तो ये सवाल है कि अक्सर औलिया इकराम रब ताला के बारे में बात तो कसर से करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए बहुत इख्तसार और एहतियात से काम लेते हैं, ऐसा क्यों? ये बड़ी सिंपल सादा बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मकाम अदब है, तो जितना ज्यादा हम गुफ्तगू करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका के बारे में, तो एहतमाल यह है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं जुबान से ऐसी बात ना निकल जाए जो हम गलती से मंसूब कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दर हकीकत वो हो ना, तो उसकी बड़ी कड़ी सजा है। इसलिए औलिया कराम प्यार तो बेपनाह करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन एहतियात और अदब से काम लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, उस तरह से बात नहीं करते। रब का मामला कुछ और है, रब के यहां तो जुनून है, जितने ज्यादा जुनून के साथ रब के बारे में कोई बात करता है उतनी उसे पसंद आती है, तो वहां पे इसीलिए वो रब के बारे में बड़े इत्मीनान से बात करते रहेंगे। लेकिन जब कोई वली अल्लाह रब के बारे में जिक्र करता आपको दिखाई दे, हम बातें कर रहा है, जो ही रब का जिक्र शुरू करेगा उसकी आवाज में आपको तब्दीली महसूस होगी, उसके लबो लहजे में तब्दीली महसूस हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी कोई मां अपने बेटे के बारे में जब बात करे लायक वो बेटा, तो उसके लबो लहजे में एक फखर महसूस होता है, चेंज आती है उसके लबो लहजे में। तो चूंकि दरवेश और वलीअल्लाह यह समझता है कि उसका रब सबसे बड़ा है, उसका रब बड़ा मेहरबान है, उसका रब कुल कायनात का पालने वाला है, तो वो जो उस रब अपने रब की अजमत को वो देखता है, उसका एहसास रखता है, तो जो ही वो रब के बारे में जिक्र करेगा उसके लबो लहजे में तब्दीली आ जाएगी। तो उस मोहब्बत के मारे वो वहां, चूंकि ये डर नहीं है कि रब गिरफ्त कर लेगा, वो समझता है कि मेरा रब तो माफ करने वाला है, कहीं कोताही मुझसे अनजाने में हो भी गई तो माफ कर दिया जाऊंगा, तो बड़ी बेफिक्री से बात करता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अदब का है, वहां बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये अगला सवाल ये है कि क्या ये सच है कि जिस शख्स को फतह मिलनी हो, फतह मिलने से 3 दिन पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस शख्स से दोस्ती करते हैं और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मानूस करते हैं, क्या ये उस शख्स का रूहानी तजर्बा होता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है सिर्फ वही लाना, और वही का सिलसिला तो मुनकता हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका के बाद। अब किसी शख्स पर वही नाजल नहीं हो सकती, अगर कोई दावा करे तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। और रह गई दोस्ती की बात, तो ये दोस्त तो सभी के हैं, फतह अता होने का तो पता ही नहीं चलता किसी फकीर को कि उसको फतह अता हो गई है। वो तो फतह अता होने के बाद जो तब्दीलियां आती हैं उससे पता चलता है कि मैं किसी मकाम पे आ गया, या फिर उसको पता लगता है जब उसके मुर्शिद उसे ये फरमाते हैं कि जाओ अब तुम फलां इलाके में जाके बैठो और वहां खल्के खुदा तक रब का पैगाम पहुंचाओ, तो एहसास होता है कि मुझे फतह हासिल हो गई। ये न मेरे इल्म में है, न मैंने कहीं पढ़ा है, न सुना है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 दिन पहले दोस्ती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहां तो ये आलम है कि जो मोहर सप्त होती है उसका भी पता नहीं होता वक्त से पहले कि आज रात मोहर सप्त हो जाएगी मेरे लिए। तो वो तो जब मोहर सप्त होती है तो इंसान की इस जगह बहुत ही इरिटेशन होती है, आदमी खुजलाता रहता है उस जगह को बैठा, तो इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है, और वो इरिटेशन आमतौर पर 3 दिन तक रहती है, लेकिन पहले दिन तो बहुत होती, तो शर्म आती है लोगों की, महफिल में बैठे हुए इंसान खुजला रहा है उसे। वो भी मुर्शिद से पूछ के पता चल जाए कि जी यहां इरिटेशन बहुत है, क्या हो गया इधर, तो वो फरमा देंगे कि यहां तुम्हारे मोहर सप्त हो गई, या अल्लाह ताला किसी पर अगर ये कर्म कर दे उसे खुद अंदाजा हो जाए कि मेरे मोहर लग गई वलायत की आज, तो ये इरिटेशन उसकी है, लग जाता है कुछ लोगों को पता, उस मोहर के लगने का नहीं पता लगता कि मेरे मोहर लगने वाली आज रात को, रात सोते में लगा दी जाती है। अगला सवाल इनका है जनाब, हजरत भाई अजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर अल्लाह ताला के खास बंदों को जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार से महजूब कर दिया जाए तो इस तरह दादो फरियाद शुरू कर देंगे जिस तरह अहले जहन्नम फरियाद करेंगे। ये अहले जन्नत का सिलसिला तो बहुत बुलंद है, मैंने यहां शायद किसी वक्त जिक्र किया था कि फकीर आदमियों की जिंदगी में भी यह होता रहता है कि उनका कश बंद हो जाता है अचानक, और उन पे वो वक्त भी आता है कि दुआ जो करेंगे काम उसके बिल्कुल उलट हो जाएगा, 180 डिग्रीज अपोजिट हो जाएगा। तो उस वक्त जो इंसान में बेचैनी पैदा होती है वो भी काबिले दीद होती है, तड़पता है इंसान ऐसे जैसे पानी के बगैर मछली तड़प रही है। ये और बात है कि 2-4 बार जब ये वाकया पेश आता है तो उसे समझ आ जाती है कि असल में ये अल्लाह मुझ पर रहमत कर रहा है कि ये जो अचानक कश सलब हो गया मेरा वक्ती तौर पर, और दुआ जो है वो 180 डिग्रीज अपोजिट काम करने लग गई कि इंसान ने कहा कि जो भाई तुम्हारा अल्लाह मेहरबानी करेगा काम कर देगा, वो काम नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह होती है कि शुरू शुरू में जब ये चीजें आता होती हैं तो इंसान के अंदर इस्तेमाल ये होता है कि तकब्बुर न पैदा हो जाए, वो ये ना सोच ले कि जो मैं चाहता हूं मैं देख लेता हूं, जो मैं कहता हूं वो हो जाता है। अब ये तकब्बुर है, तो अगर ये तकब्बुर हो गया इंसान में तो उसका सब कुछ छिन गया, खत्म हो जाएगा। तो रब मेहरबानी करता है कि उसको झटके देता रहता है, उस नींद से जगाता है कि होश करो रब मैं हूं, ये सिर्फ मैं हूं जिसकी मेहरबानी से तुम देखते हो, और ये मैं हूं जिसकी मेहरबानी से तुम्हारी की भी दुआएं कबूल होती हैं, वरना तुम कुछ नहीं हो। तो जब उसको ये झटका लगता है तो उसके पांव जमीन पे दोबारा लग जाते हैं, इंसान तकब्बुर में नहीं आता। ये और बात है कि जब वलायत के एक खास मकाम पर चला जाए इंसान, तो वहां ये सिलसिले फिर ऐसे नहीं होते, इसलिए कि उस वक्त तक वो पुख्ता हो जाता है, उसको पूरी तरह अदराक होता है कि मैं कितना हकीर हूं और मेरा रब कितना अजीम तरीन है, फिर वो तकब्बुर में नहीं आता, इसलिए कि इतना पुख्ता यकीन होता है उसका कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूं ये मेरे रब की मेहरबानी है, वो अपनी मेहरबानी से दिखा रहा है, और ये जो काम दूसरों के हो रहे हैं या मेरी कही हुई बात पूरी हो रही है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे रब की कमाल मेहरबानी है। तो ये अहले जन्नत तो बहुत दूर की बात है, यहीं जब कश्फ सल्ब होता है दो तीन दिन के लिए, क्योंकि ये वक्त आमतौर पर तीन दिन होता है, यह बहुत एक्सटेंड कर जाएगा तो सेवन डेज, इससे ज्यादा नहीं होता, तो उस वक्त उस आदमी की हालत देखने वाली होती है कि आदमी किस तरह तड़पता है। तो जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार का सिलसिला मुनकता हुआ है तो उसका क्या हाल होगा। अगला सवाल मैं पढ़ देता हूं, जवाब देने का वक्त नहीं रहेगा, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह अगले इतवार इसका जवाब अर्ज कर दूंगा कि क्या हरूफ मकतियात का इल्म सिर्फ उस शख्स को होता है जो लोहे महफूज पढ़ने की सलाहियत रखता हो। इसका तफसील जवाब मैं इंशाल्लाह अगले इतवार अर्ज करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ इसमें एक जरा सी चीज मैं करेक्ट कर दूं, लोहे महफूज को पढ़ने का ताल्लुक सलाहियत से नहीं है, इसका ताल्लुक रब की रहमत से है कि जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए, जो उस मकाम पर चला जाए उसे कि रब ताला उसे इस काबिल कर दे कि लोहे महफूज पर नजर डाल सके, तो वही लोहे महफूज पर नजर डाल सकेगा, अदरवाइज सलाहियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका तफसीली जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे अर्ज करने की कोशिश करूंगा, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।